جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ النمل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معروف قرآن کی جلد نمبر 6 سے، اور اس میں ان آیات یعنی نمبر 20 سے لے کے 28 تک کہ ہم معروف مسائل پڑھ رہے تھے. پیج نمبر 573 کے اوپر ہیں 573، اور اس میں ہم نے جو آخری مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ کیا انسان کا نکاح جنی عورت سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے دو جواب دیے تھے. ٹھیک ہے، وہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اب دو کی بجائے جو منہ سے نکل رہا ہے، تو دو جواب دیے تھے. ایک تو یہ کہ بایولوجیکلی اس کے اوپر اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ بایولوجیکلی اٹ از پاسبل. ٹھیک ہے، کہ یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ممکن ہے، یہ میاں بیوی جو ہے نا وہ انسان اور جن ہو سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے بایولوجیکل تو یہ پاسبل ہے، لیکن کیا شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی یہی تھا کہ یعنی بعض علماء نے تو کہا ہے کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جن جو ہے وہ بالکل ایک الگ جنس ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے حضرات نے اس کو جائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایون موجودہ دور کے اندر بھی اس قسم کے واقعات اپنے اکابر علماء سے بھی ہم نے سنے ہیں. ٹھیک ہے، کہ شوہر جو ہے وہ انسان ہے اور بیوی جو ہے وہ جن ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب اگلا موضوع جو ہم نے آج پڑھنا ہے وہ ہے کہ کیا کسی عورت کا بادشاہ ہونا یا کسی قوم کا امیر و امام ہونا جائز ہے یا نہیں، کوشچن مارک کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک طویل بحث بھی کی جا سکتی ہے بہت، اب رکے ہم کر ہی رہے ہیں اتنے عرصے سے اس کے اوپر بات. تو حضرت لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کا بادشاہ کسرا کی بیٹی کو بنا دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يفلح قوم ولو امرهم امرأة. ٹھیک ہے، یعنی وہ قوم کبھی فلاح نہ پائے گی. لن کا جو ترجمہ ہے نا وہ تاکید کے ساتھ، کبھی فلاح نہیں پائے گی. ٹھیک ہے، یعنی فیوچر کے اندر جو ہے وہ نگیشن لن کے ذریعے سے کی جاتی ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی کہ جس نے اپنے اقتدار کا مالک عورت کو بنا دیا. ٹھیک ہے، ہوا کیا تھا کہ کسرا کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا خط لکھا تھا، دین کی طرف دعوت کا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 100 سے زیادہ فرما رواؤں کو، بادشاہوں کو اور گورنرز کو اور امیروں کو، یعنی جو امراء تھے مختلف علاقوں کے، سلطان تھے وغیرہ، تو ان سب کو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھے تھے کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں تو تم جو ہے نا وہ میرے اوپر ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک خط جو ہے وہ کسرا جو کہ فارس کا بادشاہ تھا، ایران جس کو پہلے جو ہے وہ فارس اور اسی سے فارسی کی زبان کا لفظ بھی وہیں سے آیا، تو کسرا نے جب یہ خط دیکھا نا، پڑھا، ایک صحابی لے کے گئے تھے انہوں نے اس کو دیا، تو اس نے جو ہے وہ خط کے نعوذ باللہ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے، یہ جو اس نے شان نبوت کے اندر گستاخی کری نا، اتنی بڑی گستاخی. ٹھیک ہے، اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کوئی اس نے برا بھلا نہیں کہا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کا کوئی جیسے ابو لہب کیا کرتا تھا یا ابو جہل کیا کرتا تھا، یعنی تھوک پھینکنا یا اونٹ کی اوجڑی لا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کے اوپر رکھ دینا، اس قسم کا تو کوئی اس نے کام ہی نہیں کیا، وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور تھا. ٹھیک ہے، उसने खत को खाली, खत को टुकड़े टुकड़े किया था, लेकिन वो खत भी किसी आम इंसान का नहीं था, वो अल्लाह के महबूब का खत था। ठीक है, तो ये जो एहानत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसने जुर्म किया था ना, तौहीन रिसालत जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे पेट में आजकल बहुत ज्यादा दर्द होता है कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही नहीं माफ कर दिया था, तौहीन रिसालत वालों को माफ नहीं किया था, अनलेस के तौबा करके माफी मांगने के लिए आ गए थे तब माफ किया था, वरना नहीं माफ किया था। ठीक है, इसके लिए हमें हदीस की किताबें पढ़नी चाहिए, सीरत की किताबें पढ़नी चाहिए, तब हमारी समझ में आएगी बात कि ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसने जो तौहीन रिसालत का ये जुर्म किया ना, तो इसके बाद अल्लाह ताला का अजाब इसके ऊपर आया और इसके अपने सगे बेटे ने इसको कत्ल कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये मरने से पहले इसको खुद उस बेटे से खौफ था कि वो मेरा तख्त जो है ना वो हासिल करने के लिए मुझे किसी वक्त कत्ल करेगा, तो इसने अपने बेटे के लिए पहले से इंतजाम करके रखा हुआ था। जहर की बोतल के ऊपर उसने जो है ना वो कुछ लिख दिया था कि ये तो बड़ी जबरदस्त किस्म की दवा है, इस दवा खाने से जो है ना वो इंसान के अंदर बड़ी कुव्वत आ जाती है, ताकत आ जाती है, ये उसने ना जहर की शीशी को लेबल करके छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको तो बेटे ने कत्ल कर दिया, और फिर बेटे ने जो है ना वो अपने बाप के माल असबाब में जब ये बोतल देखी, शीशी देखी, तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्त दवा होगी, इससे तो मुझे बड़ा फायदा होगा, इसने वो शीशी पी ली। ठीक है, और इससे जो है वो बेटा भी मर गया, और फिर उसके बाद ऐसा मामला हुआ कि उस खानदान के सारे जितने मर्द नेक्स्ट इन किन थे ना उसके, यानी नेक्स्ट इन थ्रोन, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इन लाइन टू द थ्रोन, तो वो सारे के सारे मर्द जो हैं वो दुनिया से किसी ना किसी तरीके से चलेगा, आपस में लड़ बड़ करके एक दूसरे को कत्ल वतल करके सारे मर्द मर गए, एक बेटी बची, सिर्फ एक औरत बची। ठीक है, तो अब वो उसी खानदान में से थी, तो लोगों ने ना उसी को उठा करके तख्त के ऊपर बिठा दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी तफसील थी कसरा की बेटी के बादशाह बनने की, तो आप सुस्तरम ने इस तरीके से उसके बारे में फरमाया। तो इसीलिए उलमाए उम्मत इस पर मुत्तफिक हैं कि किसी औरत को इमामत व खिलाफत या सल्तनत व हुकूमत सुपुर्द नहीं की जा सकती। ठीक है, ना नमाज की इमामत ना खिलाफत। अब खिलाफत का मतलब कि जो अमीर था, जो सरबराह था, उसकी गैर मौजूदगी में कोई औरत जो है ना वो अमीर बन जाए। ठीक है, चाहे वो गैर मौजूदगी परमानेंट हो चाहे वो टेम्पररी हो। परमानेंट का मतलब कि अमीर साहब का इंतकाल हो गया, अब उनकी जगह पे जो अमीर बनेगा वो औरत नहीं हो सकती। ठीक है ना, या ये कि कोई अमीर साहब जो हैं वो चले गए किसी सफर के ऊपर, तो पीछे किसी औरत को अपनी जगह खलीफा बना करके चले गए। ठीक है, तो खिलाफत भी किसी औरत को नहीं दी जाएगी। सल्तनत, सल्तनत सुल्तान से निकला, और सुल्तान का मतलब होता है पोलिटिकल माइट, अथॉरिटी, मिलिट्री माइट। ठीक है, जिसके पास हो, पुलिस का डिपार्टमेंट हो, फौज का डिपार्टमेंट हो, जिसके हुक्म के ताबे, ठीक है, उसको सुल्तान कहते हैं। तो सल्तनत भी किसी औरत को नहीं दी, सुपुर्द नहीं की जा सकती, और ना जो है वो हुकूमत किसी औरत को सुपुर्द की जा सकती है। हुकूमत का मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के इंचार्ज हैं। ठीक है ना, बेशक आपके पास जो है वो फौज की कमांड नहीं भी है। ठीक है, आपके पास जो है वो पुलिस की कमांड नहीं भी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तो आप इंचार्ज हैं ना। ठीक है, जैसे किसी इलाके का गवर्नर, किसी इलाके का वजीर आला। वजीर आला हमारे मुल्क के अंदर इसके पास कोई फौज वौज नहीं होती, गवर्नर के पास भी ऐसा फौज नहीं होती, फौज तो हमारे यहाँ वैसे भी किसी के पास नहीं होती, वो तो अपने ही माशाल्लाह। ठीक है, तो हुकूमत यानी आपके पास ऐसी कोई पोलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, यानी फिजिकल फोर्स नहीं है आपके पास, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव तो आप इंचार्ज है ना, ये भी किसी औरत को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, बात समझ में, ये चार चीजें अलग अलग। ठीक है, इमामत के बीइंग द लीडर ऑफ पीपल, चाहे वो बेशक हुकूमत नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हो, उसके पास ना तो हुकूमत है उसके पास, ना उसके पास जो है वो खिलाफत है, ना उसके पास जो है वो सल्तनत है, कुछ भी नहीं है उसके पास, बस वो लीडर है। ठीक है ना, एक जत्थे की लीडर है, एक एक जो है वो एक क्राउड की लीडर है, नहीं, हमारे दीन के मुताबिक ऐसी लीडरशिप भी किसी औरत को नहीं दी जा सकती। ठीक है, इमामत ना खिलाफत ना सल्तनत ना हुकूमत। ठीक है जी, बात क्लियर है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। बल्कि नमाज की इमामत की तरह इमामत कुबरा भी सिर्फ मर्दों को सजावार है, मर्दों को सजावार है, यानी ये जो सजा है ना सिर्फ मर्दों को ही मिलेगी, इमामत कुबरा वाली। ठीक है, क्या मतलब वैसे तो सदावार का मतलब होता है डिजर्विंग, ठीक है, वैसे डिजर्विंग के मीनिंग में होता है, लेकिन अगर हम उसको दूसरे अंदाज में देखें कि भाई जो अमीर बनाया जाता है तो उसकी गर्दन भी तो आती है ना, फिर उसकी गर्दन के ऊपर जिम्मेदारी आती है और उससे कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। तो अगर आप उसको कयामत के दिन की हिसाबदही के एंगल से देखें तो ये सजा कि कयामत के दिन सबका जवाब देना है, ये सजा जो है ना वो किसी औरत को नहीं दी जाएगी, है ना। अगर काश की औरतें इसको इस अंदाज से देख लें तो खुशी का इजहार करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उनको ये सजा नहीं दी गई है, ये सजा सिर्फ मर्दों को दी गई है, ठीक है। और मर्द जो है ना वो जरा उछलना कूदना बंद करें इसके ऊपर, खुशी के मारे जो हम फूले नहीं समा रहे होते हैं कि नहीं औरत को नहीं दी गई, हमें दी गई है, अल्लाह के बंदे तुम्हें सजा दी गई है ये, ठीक है ना। अब यू बेटर बी मोर केयरफुल, ठीक है, खुशी मत मनाओ उसके ऊपर, ठीक है, बल्कि फिक्रमंद हो जाओ कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो इनमास की इमामत की तरह इमामत कुबरा यानी कि पॉलिटिकल इमामत जो है ना वो भी सिर्फ मर्दों को सजावार है, ठीक है। अब आपने क्या सवाल किया है कि इफ इट इज एन एक्सेप्शनल केस लाइक हेयर नो अदर मैन वॉज देयर टू लीड, ठीक है। हेयर से मुराद कसारा की फारिस की बात कर रहे हैं कि आप हेयर से मुराद कौन सी वाला हेयर, फारिस का हेयर या कौन सा वाला हेयर, ठीक है। तो जी फारिस का हेयर या कौन, ये जी से तो जवाब नहीं मिला ना मुझे सवाल का भाई, आप फारिस की बात कर रहे हैं कि आप किस हेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जवाब देंगे तो फिर बात समझ में आएगी ना, आप पूछना क्या चाह रहे हैं। नहीं जरा जवाब देना तो मर्जी आपकी भाई। कंपनी के हेड भी क्या इस जिमरे में आएंगे, जी कंपनी का जो इमाम होता है वो इमाम ही होता है ना, उसके पास तो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है ना, ठीक है जी। फारिस, तो भाई फारिस ही का तो जो आपने लिखा कि एक्सेप्शनल केस था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो हदीस मुबारक फरमाई है कि कौम तरक्की नहीं कर सकती, तो वो किसके लिए फरमाई थी, किसका मामला सुन करके फरमाई थी, फारसी का मामला सुन के फरमाई थी ना, ठीक है। तो यानी क्या मतलब कि जब कोई एक्सेप्शनल केस हो भी कि कोई मर्द नहीं है लीड करने का, उस केस के अंदर भी अगर औरत को बना दिया गया, ठीक है, तो फिर वो कौम फला नहीं पा सकती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने खास इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात फरमाई, खास इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात फरमाई, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि जब कोई मर्द नहीं था तब भी औरत को बनाओगे तो कौम फला नहीं पा सकती, तो जब मर्द है, कोई मर्द अवेलेबल हो सकता है, उस वक्त अगर औरत को बनाओगे फिर क्या होगा, फिर तो किस क्या कहते हैं बकदरे, वो क्या है, क्या लफ्ज होता है, उला है, यानी और भी ज्यादा उस कौम की बदबख्ती, और भी ज्यादा उस कौम की बदबख्ती कि मर्द मौजूद थे लेकिन औरत को बना दिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो फिर माशाल्लाह, हमारे यहाँ भी बांग्लादेश में भी और बर्तानिया के भी हाल आपको पता चल रहे हैं ना, बर्तानिया के क्या हाल चल रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल अमेरिका में औरत को कभी प्रेसिडेंट नहीं बनाया उन्होंने और बनने भी नहीं देते, है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट की हद तक रखते हैं, उसके आगे की ना उसको मजाल नहीं है कोई औरत जो है वो प्रेसिडेंट के सीट के ऊपर बैठे, ठीक है। बहरहाल वो जब भी तो दुनिया के अंदर रूल कर रहे हैं अभी अभी तक कम से कम, ठीक है। अच्छा आपने क्या कहा, कंपनी के हेड भी क्या जिम्मे, हाँ जी बिल्कुल आएंगे, उनके अंडर काम करने वाले भी इस गुनाह में शामिल होंगे, होंगे क्या भाई, आपने कोई थोड़ी उनको बिठाया यार, कंपनी के हेड आपके तो नौकरी का सवाल है यहाँ पे, है ना, खाने पीने का मसला है, तो आपने वैसे कोई थोड़ी कंपनी का हेड बनाया है, नहीं, ये नहीं है। फिर उसके बाद वैसे हमारे यहाँ जो बीबी साहिबा ऊपर आके बैठी हुई थी, ठीक है, तो बीबी साहिबा के नीचे हजरत जी थे, राइट, हजरत जी भी तो उस मुल्क में रहते थे ना, बड़े बड़े आइमा कराम मशाइख उजाम उसी मुल्क में रहते थे ना जब बीबी साहिबा जो है वो वजीर आजम बनी हुई थी, तो सबको सबके ऊपर ये गुनाह आ रहा होगा, नहीं, ठीक है ना। बड़े बड़े औलिया भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पहले भी रहते थे, लेकिन उनके ऊपर इसका गुनाह नहीं आएगा, ठीक है। पोलिटिकल इमामत नमाज की इमामत से बड़ी होती है, कुबरा इन वॉट सेंस, जी पोलिटिकल इमामत नमाज की इमामत से बड़ी होती है, ठीक है, उसके अंदर नमाज की इमामत शामिल होती है। पॉलिटिकल इमामत इज द सुपर सेट, नमाज की इमामत इज द सब सेट, ठीक है, ये तो पता है ना सुपर सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, ठीक है। तो सही है, तो पॉलिटिकल इमामत जो है वो ऐसे बंदों को जिसको कुलू अल्लाह भी पढ़नी नहीं आती, राइट, और भी बोले तो नाराज हो जाएंगे कुछ लोग, क्या क्या बोलना भी नहीं आता, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल इमाम बना के हमने बैठा बिठाया हुआ अपने ऊपर, ठीक है ना। तो दिस क्लियरली मीन्स फरहत हाशमी फॉल्स इनटू इट। फरहत हाशमी किसकी इमाम है भाई? भाई वो तो एक स्कॉलर बन के बैठी हुई है, वो गैर मुकल्लदियत उनका दूसरा उनका मसला है, गैर मुकल्लद हम नहीं मानते गैर मुकल्लदियत को, ठीक है, लेकिन वो इमामत कहाँ से आ गई उसकी? ठीक है, तो इमामत तो आई नेवर सॉ एनी पर्सन लाइक दैट एज अ इमाम। ठीक है, खैर, तो आगे फरमाते हैं कि रहा बिल्कीस का मलकह सबा होना, तो इससे कोई हुक्म शरई साबित नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कीस मलकह सबा थी तो इसको आप हुज्जत के तौर पर इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि वो हमारे यहाँ जब बनी थी ना, तो वो दलील के तौर पर किसको लेके आ रहे थे? अल्तमश की बेटी है? वो क्या नाम था? रजिया खातून, है ना, सबको रजिया खातून एकदम से याद आ गई थी, रजिया खातून के नाम था ना वो अल्तमश की बेटी का। अल्तमश अल्लाह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। ठीक है भाई, ये इस किस्म की दलाइल जो है ना, वो पूरे 1400 साल के अंदर आपको एक रजिया खातून याद आनी शुरू हो गई सारी की सारी। बहरहाल, तो इस वो उनका 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 अमल कहाँ से हुज्जत हो जाता है यार? ठीक है, फरमाते हैं कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे खुद निकाह किया और फिर उसको हुकूमत व सल्तनत पर बरकरार रखा, अगर ये साबित करते हो तो फिर तो बात बनेगी, और ये किसी सही रिवायत रिवायत से साबित ही नहीं है जिस पर अहकाम शरिया में इतमाद किया जा सके। ठीक है, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है वो उसको जो है वो इसके ऊपर बाकी रखा। ठीक, जी, आज ही की न्यूज में बड़ी खुशी मनाई गई है कि लेडी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी तालिबान से मिलने गई है। तो भाई जो मना रहे हैं उनको मनाने दो भाई, ठीक है, हम क्या करें इसका। बहरहाल, तो रजिया सुल्ताना यही नाम था। जी, तो भाई ये जो मामला है ना, ये बस आज के दौर के अंदर ये कलमा कुफर कलमा कुफ कुफ कुफर कुफर जैसा ना, ये फेमिनिज्म के खिलाफ कोई बात कर दिया जाए, और ये तो बस ठीक है। तो बस जो भी हैं, जब भी हालात ऐसे हैं, जो भी है वगैरह, लेकिन बहरहाल हमने इस टॉपिक के ऊपर बड़े अरसे से बात करनी शुरू करी भी है। जुमे के दिन के जो बयानात हैं वो वेबसाइट के ऊपर भी पड़े हुए हैं, उसके अंदर हमने आपके सामने ये भी बात रखी थी कि जब दुनिया को जो है वो क्या कहते हैं, इन्होंने चेंज करने का पूरा एक फॉर्मूला दे दिया था ना, ठीक है, वो जो हमने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस और ये सारी बातें करी थी, तो उन्होंने कहा था जी मुसलमानों को जो है ना वो तीन तब्दीलियां करनी है अपने अंदर, तब जो है ना फिर सारा मसला खत्म हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मसला खत्म हो जाएगा मुसलमानों और गैर मुसलमानों के दरमियान, सारा मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, है ना, कि हरगिज नहीं, वहां पर भी लन तरदा का लफ्ज इस्तेमाल किया, जैसे कि इस हदीस के अंदर लन युफलिहा का लफ्ज इस्तेमाल किया नबी अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, तो उसी तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरदा, हरगिज नहीं राजी होंगे तुमसे यहूद व नसारा, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, हत्ता कि तुम उनकी मिल्लत की इत्तिबा शुरू कर दो, तुम उनके पीछे पीछे चल पड़ो। ठीक है, तो भाई मुसलमान और गैर मुस्लिम आपस में अल्लाह गुल्ला के साथ रहना शुरू हो जाएं, सारे इख्तलाफात खत्म हो जाएं और एक दूसरे को गला लगा लें, तो उसके लिए जो है ना वो एक हजरत थे यूरोप के, अमेरिका के रहने वाले, तो उन हजरत साहब ने जो है ना वो तीन नुकाती फॉर्मूला पेश किया था। ठीक है, वो तीन नुकाती फॉर्मूला क्या था? एक तो ये था कि जी आप जो है ना वो हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है ना, जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं, आप उसके साथ जीना सीख लें, कोपिंग विद द मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा उसने क्या नुकता पेश किया था, सारे मसले खत्म करने का, दुनिया के में सारे मसले खत्म हो जाएंगे, दूसरा नुकता क्या पेश किया था? एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ सेक्सुअल इक्वालिटी। ठीक है ना, ये जो मर्द और औरतों के दरमियान तुमने फर्क रखा हुआ है ना, कि तुम जो है वो ये कहते हो कि जी हमारे कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम और तुम्हारे तुम्हारी जो जौजा है तो उसको हम जन्नत से निकाल देंगे, ठीक है, अगर तुमने जो है ना वो शैतान की अपने दुश्मन की बात मान ली ना तो हम तुम्हें जन्नत से निकाल देंगे, तो वहां पर जो है ना अल्लाह ताला ने हर बात जो है वो तुम और तुम्हारी जौजा, तुम और तुम्हारी जौजा, तुम और तुम्हारी जौजा जौजा, ठीक है, लेकिन जो बाहर की मुशक्कत उठानी थी कि तुमको जब जब जन्नत से निकाला जाएगा ना, फिर तुम्हें रिस्क कमाने की मुशक्कत अकेले उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम लोग जो ये पीटे जा रहे हो ना इस बात को कि जी अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर जो है ना वो औरत और मर्द के दरमियान फर्क रखा है, औरत को जो है वो बाहर की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं दी है, ठीक है ना, औरत का रिवायती रोल जो है वो घर के अंदर के रोल्स हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा रोल माँ, ठीक है, फिर जो है वो बहन रखें या बीवी रखें, है ना, जब तक शादी नहीं हुई तो बहन बहन ही बहन होती है, शादी हो जाती है तो बीवी हो जाती है, ठीक है, तो माँ बहन बीवी और फिर बेटी, ये हैं अल्लाह ताला के दिए हुए रोल्स औरत को, ठीक है। मर्द को अल्लाह ताला ने क्या रोल दिए, मर्द को अल्लाह ताला ने बेटे का रोल दिया, और जो है वो बाप का रोल दिया, और जो भाई का रोल दिया, और शौहर का रोल दिया, ठीक है ना, ये घर के खानदान वाले रोल्स हैं। और उसके अलावा मर्द को जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो दकतूर का रोल दिया, दकतूर साहब ये वाला रोल भी आप प्ले करेंगे, शेख रूहानी दकतूर साहब, ठीक है, रूहानी दकतूर वाला रोल भी मर्द प्ले करेगा, ठीक है ना, और मर्द को जो है वो अमारत का रोल भी दिया, मर्द को जो है वो मस्जिद की इमामत का रोल भी दिया, मर्द को जो है वो मुआशरे की इमामत का भी रोल दिया, मुल्क की इमामत, पॉलिटिकल अथॉरिटी की इमामत, और इन सब चीजों की इमामत का रोल जो है अल्लाह ताला ने मर्द को दिया, ठीक है, चाहे जिसकी भी शक्ल का हो, ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरेट इमामत हो, चाहे जो है वो पॉलिटिकल इमामत हो, चाहे जो है वो आपके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की इमामत हो, जो भी इमामत हो, ये सब का सब जो है वो घर से बाहर का मामला है, ठीक है ना, ये सारा का सारा काम अल्लाह ताला ने, यानी ये सारी सजाएं अल्लाह ताला ने किसको दी, मर्द को, ठीक है ना। अच्छा दी क्यों, ये भी आपसे अगर अगर ऐसे ही अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं एहतमाली दर्जे में, कोई यकीनी दर्जे में नहीं, एहतमाली दर्जे में जरा अगर आप तौजीह इसकी बयान करें कि आदम अलैहिस्सलाम को जो है ना वो फतश का, ठीक है, कि तुम अकेले जो है ना मुशक्कत उठाओगे, बाहर के मामलात की मशक्कत तो जो है वो तुम अकेले उठाओगे, बेगम साहिबा जो है ना वो आपकी अंदर रहेंगी, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करें, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा वाली स्टोरी को थोड़ा सा बैक ट्रैक करें, तो हुआ क्या था, क्या हुआ था जन्नत के अंदर, कि जिसके बाद फिर दोनों को जो है वो जन्नत से निकाला गया था, ठीक है, तो हुआ क्या था ऊपर, शैतान आया था ना, ठीक है, तो शैतान ने आकर के जो है वो किसको अपना अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद हजरत हव्वा के कहने पर फल खा लिया था, जी शैतान ने आकर के जो है ना वो अपना जो 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 ना पत्ता फेंका, ठीक है, जो पत्ता फेंका था ना शैतान ने, वो किसके ऊपर फेंका था, औरत के ऊपर फेंका था, ठीक है ना, औरत को जो है वो कन्विंस कर लिया था, फिर औरत जो है ना उसने अपने शौहर को कन्विंस कर लिया, जैसे कि हमारे मशायख हमारे हजरत फरमाते हैं ना, होम मिनिस्ट्री के सामने जो है ना बड़े बड़े फिरौन भी जब घुटना टेक देते हैं तो भाई फिरौन तो सख्त इंसान होते हैं ना, नबी वली ये तो बड़े नरम दिल इंसान होते हैं, ये तो बड़े सीधे साधे शरीफ इंसान होते हैं, ठीक है ना, तो शुरफा तो वैसे ही औरत के सामने औरत की इज्जत कर रहे होते हैं, औरत की बात मान रहे होते हैं, ठीक है, औरत के सामने तो फिरौन तक जो है वो, है ना, जब वो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का बच्चा आ रहा है ना, और हजारों बच्चों को जो है वो जबह करवा चुका है, इस बच्चे को क्यों छोड़ दिया उसे, बेगम साहिबा ने कहा था छोड़ दो, ठीक है ना, बेगम साहिबा के सामने वो इनकार नहीं कर सका, ठीक है। तो अब हमारा जो दुश्मन है उसको भी तो पता है ना ये सारी बातें, आलिम तो वो है ना, आलिम भी है, बल्कि आलिम तो क्या, वो आरिफ भी है, ठीक है ना, तो उसने देखा कि भाई ये तो सीधे हाथों जाना, मैं डायरेक्ट इनसे बात करूंगा, ये तो मेरी बात मानने वाले नहीं है, तो मैं जो हूँ ना इनकी बेगम साहिबा को मनवा लेता हूँ, बेगम साहिबा इनको मनवा लेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आज भी इंसानियत को ये जो है ना, ये जो 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 शैतान और शैतान के जो पैरों हैं, वो पूरी की पूरी इंसानियत से जो अपना दुश्मन अपने जो बदले निकाल रहे हैं ना, वो बदले कैसे निकाल रहे हैं, बेगम साहिबा को मना लो, ठीक है ना, बेगम साहब को कहो आप क्या अपना टाइम जाया कर रही हैं, आप क्या घर के अंदर जो है ना वो फंसी हुई बैठी हैं, और आपकी तो जिंदगी बेकार है, और आपका तो कुछ नहीं, आपको नहीं आता, आपकी तो इज्जत नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, ठीक है ना, उनको निकालो बाहर, घर से निकालो बाहर, ठीक है ना, जब ये बाहर निकलेंगे ना तो घर हो जाएगा इनका एक्सपोज, ठीक है ना, इनकी औलादें हो जाएंगी एक्सपोज, इनकी नस्लें हो जाएंगी एक्सपोज, कौन उनकी नस्लों का जो है वो काम करेगा, कौन उनकी जो है वो होम स्कूलिंग करेगा, है ना, एक साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, होम स्कूलर अपने बच्चों को वो होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, तो उनसे जो है ना वो इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि वर्किंग वुमेन क्या करें, वर्किंग वुमेन जो है ना, वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग क्या करवा सकती हैं, तो वो भी अच्छे इंसान हैं। काफी उनकी बातें मुझे पसंद आई जो उन्होंने होम स्कूलिंग के इंटरव्यू में बताई, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। और हम यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं इतने से, उन्होंने कहा भाई वर्किंग वुमेन जो है ना, ये तो नेचर के खिलाफ है ना, अनलेस के कोई मजबूरी हो, जिसके अंदर मजबूरी में तो भाई सुअर खाना भी जायज हो जाता है ना, तो मजबूरी की तो बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर वर्किंग वुमेन हैज नथिंग टू डू विद नेचर, ठीक है ना, ये तो नेचर ही के खिलाफ है। तो जब आप नेचर के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर होम स्कूलिंग की क्या बात करते हैं, होम स्कूलिंग इज नॉट फॉर यू, देन आप होम स्कूलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बच्चों के साथ जो काम है ना, ये मर्द के बस की बात नहीं, अगर होती तो फिर औरत के बगैर ही जिंदगी गुजारना बड़ा आसान हो जाता, ठीक है ना, वो तो वो कहते हैं ना जी कि जी यू कैन नॉट लिव विद देम, ये गोरों की बात है बाय द वे, अमेरिकन ऑथर है ना, है? कहता है कि यू कैन नॉट लिव विद देम, यू कैन नॉट लिव विदाउट देम, ठीक है ना, इनके साथ रहना भी बहुत मुश्किल काम है और इनके बगैर रहना भी बहुत मुश्किल काम है, तो भाई अगर ये सारी मजबूरियां ना होती तो बगैर ही जिंदगी गुजार रहे, तो औरतें भी यही कहेंगी हाँ भी हम भी मर्दों के बगैर जिंदगी गुजार रहे होते, ठीक है। बहरहाल ये सब शैतान वाली बातें हैं, लेकिन भाई अल्लाह ताला ने रोल्स दिए हैं, असल बात तो ये है, बाकी तो तफरी और मजाक और उस किस्म की हंसी मजाक करते ही रहते हैं लोग, असल बात तो ये है कि भाई जिसने बनाया है ना, ठीक है ना, जिसने बनाया है ना, तो उसने जो है वो रोल्स असाइन कर दिए हैं। ये कैसे हो सकता है कि उसने जो है वो पूरी दुनिया बनाई और दुनिया के अंदर जो है वो दो ही जेंडर्स बनाए इंसानों के, और समहाउ नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला ही फॉरगॉट टू असाइन देम देयर रोल्स, है ना, रोल्स ही असाइन नहीं किए, जो मर्जी चाहे तुम करो, जैसे तुम अपने आप को सेल्फ डिफाइन करो अपने रोल्स को, ठीक है ना, ये सेल्फ डेफिनेशन के ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ दिया क्या दुनिया को, ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं किया अल्लाह ताला ने, रोल्स असाइन किए और अपने कुरान के अंदर इस बात को हमें बता भी दिया और अपने नबी अलैहिस्सलाम के सारे जरिए से भी बता दिया, ठीक है। अब हम इसके साथ मैसअप करने की कोशिश करते रहे तो भाई किसी का नुकसान नहीं है ना, तो दुनिया इससे तबाह हो जाएगी ना कुछ होगा, हम खुद हम तबाह हो जाएंगे और हमारी अपनी नस्लें जो है ना वो तबाह हो जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को जो है ना वो इस वक्त अगर अपने आप को बचाना है अजाब से अल्लाह ताला की, और अपनी नस्लों को और अपने पूरे मुआशरे को बचाना है ना, तो इस वक्त जो है ना इस टॉपिक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, इसको समझ लें और इतना अच्छी तरीके से समझ लें कि ना सिर्फ ये कि खुद इस बात के ऊपर पक्के हो जाएं, बल्कि अगले बंदे को भी समझा सकें कुछ, ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर समझाने के लिए। खुद गोरे और वो मिखाइल गोरबाचोव को जो है वो आजकल बहुत लोग कोट कर रहे हैं कि उसने जो प्रेस्ट्रॉइका की जो मूवमेंट स्टार्ट करी थी अपने मुल्क के अंदर, तो उसमें उसने ये भी बात करी थी कि हमने अपनी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, ठीक है ना, औरत को घरों से बाहर निकाल करके हमने अपनी फैक्ट्रीज तो चला ली, हमें थोड़ा सा फायदा तो हो गया औरत को बाहर निकाल करके, लेकिन हमारा मुआशरा बर्बाद हो गया। तो प्रेस्ट्रॉयका जो मैंने तहरीक चलाई है अपने मुल्क के अंदर, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो उसने स्टार्ट करी थी गोर्बाचेव ने, तो उसमें से एक उसका गोल ये भी था कि हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये जो हमने अपना पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया है ना, हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, इन बातों को हमें समझना चाहिए। और बेवकूफों की बातों में जितना आना शुरू करें, जितना बेवकूफों की बात सुनेंगे उतना जो है वो आप नहीं खड़े रह सकेंगे अपने, ठीक है, तो वी हैव टू लर्न टू यू नो यानी अब पहचानना सीखें, ठीक है, कि कौन जो है वो अल्लाह के निजाम के खिलाफ बातें हमें बता रहे हैं और कौन जो है वो अल्लाह के निजाम के बारे में बात हमें बात बता रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके अंदर से आप खुद डिसाइड करें कि आपको किसको मानना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, ठीक। तो थोड़ा सा बस वक्त है 2 मिनट, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वह ऊत यत मिन कुल्ल शय, मुराद ये है कि सब जरूरी सामान जो किसी बादशाह व अमीर को दरकार होता है और अपने जमाने के मुताबिक हो सकता है मौजूद था, जो चीजें उस जमाने में इजाद ही ना हुई थी उनका ना होना इस आयत के मुनाफी नहीं, ठीक है, यानी पीछे सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी ये जिक्र आया था, बल्कि दाऊद अलैहिस्सलाम का के नहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि उनको भी हर चीज दी गई थी, हर चीज में से दिया गया था, तो वो भी खाली उसी जमाने की चीजें थी जो उनको दी गई थी, और सब जितनी जरूरत थी वो सारी की सारी दी गई थी। उसी तरह मलका सबा का भी यही मामला था, बहुत बड़ी इसकी अजीम सल्तनत थी और इसका अर्श भी बहुत अजीम था, वलहा वलहा अर्शुन अजीम, ठीक है, तो अर्श के हजरत लिखते हैं कि लफ्जी मानी तख्त सल्तनत के, ठीक है। तख्ते सल्तनत, यानी जो तख्त होता है तख्ता, या जो है वो कोई चेयर थ्रोन इस किस्म की कोई चीज जो कि सुल्तान जिसके ऊपर बैठता है, तो यानी मिलिट्री माइट रखने वाला उसके ऊपर बैठता है। तो हजरत इब्ने अब्बास से एक रिवायत में है कि अर्श बिल्कीस का तूल 80 हाथ और अर्श 40 हाथ और बुलंदी 30 हाथ। ठीक है, अब एक बंदे का हाथ जो है वो जितना होता है तो उसमें 80-80 आप बना लें, तो वो जो है वो उसका लेंथ थी, और उसकी ब्रेड्थ जो थी वो 40 हाथ के बराबर थी, और हाइट उसकी यानी थ्री डायमेंशनल किस्म का क्यूब, अच्छा खासा क्यूब था वो। अच्छा, जिस पर मोती और याकूत अहमर, ठीक है, यानी रेड, याकूत को अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं, तो रेड स्टोन्स कोई खास किस्म के, बरजद और याकूत अहमर, जबरजद और अखवर का काम था, यानी ग्रीन स्टोन्स और जबरजद तो गालबन येलोइश कलर होता होगा पता नहीं, और अहमर जो है वो तो रेड को कहते हैं, तो ऐसे याकूत उसके अंदर जड़े हुए थे, और उसके पाए मोतियों और जवाहरात के थे, यानी उसके जो पाए भी थे बकायदा जिसके ऊपर वो खड़ा होता था, तो वो मोतियों और जवाहरात से बने हुए थे, और पर्दे रेशम और हरीर के थे। हरीर भी जो है वो सिल्क कोई कहते हैं, और रेशम भी सिल्क को कहते हैं। अंदर बाहर यके बाद दीगरे 7 मुकफ्फल इमारतों में महफूज था। ठीक है, यानी क्या उसका साइज होगा कि ये इतना बड़ा अर्श जो था ना, वो भी बाकायदा उन्होंने यानी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, और वो भी 7 लेयर्स के अंदर उसको महफूज करके रखा हुआ था। अब जो लोग उस अर्श में जाते होंगे उससे मुलाकात करने के लिए या उसके दरबार में बैठने के लिए, उनको 7 दरवाजों से तो कम अज कम गुजरना होता है। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी बड़ी यानी ये कंस्ट्रक्शन थी ना, ये बिना थी ये पूरी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, तो उस जमाने में फिर इन लोगों के पास जो है ना वो इतनी पावर्स होती थी, जैसे ये अहराम मिस्र को देख करके हम हैरान रह जाते हैं ना, वो तो एक चीज बरकरार रह गई है हमारे देखने के लिए, जिसको देख करके हमें कुछ अंदाजा यानी हो सकता है कि ये सारी बातें जो किताबों में लिखी हुई है कोई दियोमालाई कहानियों वाली बातें नहीं, ये हकीकत में ऐसा था। ठीक है, और दूसरी बात ये भी कि हम अभी पिछली क्लास के अंदर बात पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि उस जमाने में तो जिन्नात का भी इंसानों के साथ अच्छा खासा इख्तलात था, तो इस किस्म के जो कंस्ट्रक्शंस होती थी, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कंस्ट्रक्शन करी हैकले सुलेमानी जिसको कहते हैं, वो भी जिन्नों के से ही करवाई थी। हो सकता है कि मलका बिल्किस ने भी इस किस्म की कंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नों की असिस्टेंस इसके अंदर शामिल होगी, इनका तो अपना बाप जो है मतलब माँ जो है वो जिन थी। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि टाइम क्लास का खत्म हो गया, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ ले। ठीक है, चलिए क्लास खत्म करते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।